ये आकाशवाणी है। अब आप विकास मेहरोत्रा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरा देश और केंद्र सरकार केरल के वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ है। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद आज वायनाड में समीक्षा बैठक की। श्री मोदी ने राहत कार्यों में सहायता के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। श्री मोदी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से राज्य की आवश्यकताओं के संबंध में विस्तृत ज्ञापन भेजने का आग्रह किया, जिस पर उचित विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार से भूस्खलन प्रभावित बच्चों के भविष्य के लिए एक दीर्घकालिक योजना बनाने को भी कहा। उन्होंने वर्ष 1979 में मोरबी बांध दुर्घटना के अपने व्यक्तिगत अनुभव का स्मरण किया। बैठक में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य के मुख्य सचिव डॉ वी वेणु ने प्रधानमंत्री को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए केंद्र से आवश्यक सहायता के बारे में जानकारी दी। भारत और तिमोर लेस्ते ने आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हैं प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन तिमोर लेस्ते के बीच सहयोग, अधिकारियों और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर सहयोग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति जोसे रामोस होर्ता ने डिली में राष्ट्रपति पैलेस में उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि सरकार भारत और मालदीव तथा क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए मालदीव के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रति वचनबद्ध है। डॉ जयशंकर 3 दिन के मालदीव दौरे पर हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइजू और रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मोमून से मुलाकात की। इस दौरान रक्षा और सुरक्षा संबंधी सहयोग, समुद्री सुरक्षा के लिए संयुक्त प्रयासों और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए साझा हितों के बारे में चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने मालदीव के 28 द्वीपों में जल और स्वच्छता संबंधी परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गन्ने के अलावा मक्का, टूटे चावल, फलों के छिलकों और बांस से एथेनॉल उत्पादन के लिए बहुआयामी और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल संघ के कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि एथेनॉल उत्पादन लाभदायक और व्यावहारिक व्यवसाय है। श्री शाह ने कहा कि सरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की सीमा बढ़ा रही है। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की स्थापना की गई। इससे एथेनॉल निर्यात के अवसर पैदा होंगे और सीधे तौर पर किसानों को लाभ होगा। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ओबेदुल हसन ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने न्यायपालिका में सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दिया। बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय कार्य सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र कानून मंत्रालय को मिल गया है और इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने इससे पहले आज त्यागपत्र देने की घोषणा की थी। विद्यार्थी, वकील और अन्य लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट परिसर में पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश से त्यागपत्र देने की मांग की। भारतीय वायुसेना IAF की टीम मलेशिया के कुआंतान में उदर शक्ति 2024 अभ्यास में सफल भागीदारी करने के बाद आज स्वदेश लौट आई। इस महीने की 5-9 तारीख तक यह अभ्यास मलेशिया की रॉयल वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया था। पेरिस ओलंपिक में खेल पंचायत न्यायालय भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के रजत पदक पर दावे के संबंध में अंतिम फैसला 13 अगस्त को सुनाएगा। 50 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल मुकाबला जीतने के बाद विनेश का वजन अधिक पाया गया था और उन्हें फाइनल खेलने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वरिष्ठ वकील हरीश सालवे खेल पंचायत न्यायालय में उनके मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। ओलंपिक खेलों में आज भारत की रितिका हुड्डा को महिलाओं की 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें किर्गिस्तान की शीर्ष वरीयता प्राप्त अपेरी मेडेट काजी ने हराया। कांस्य पदक के लिए अभी भी रैपचार्ज राउंड से उनकी उम्मीद कायम है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।